मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने थोड़ा अलग सा विषय चुना है और यह अलग सा इस मायने में है कि अभी तक कुछ जो हमारे पिछले 2 सप्ताह के एपिसोड रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि उसमें हम जीवन की उपलब्धियां, जीवन की सफलता, इन सब पर ज्यादा बातें कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा इससे बिल्कुल हटकर चलने की सोच रहा हूं और उसके तहत मैंने आज कुछ एक अलग तरीका विषय इस मायने में लिया है कि इसका संबंध कुछ आध्यात्मिकता से भी है, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, मन की निर्मलता से भी है, कह लीजिए कि धर्म से भी है। कुछ यह इस तरह का विषय है जिसे आप एक प्रकार से ऑब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं, मतलब एक अदृश्य सा विषय, यानी कि थोड़ा तर्क और भौतिकता से हटकर भावनात्मकता और आध्यात्मिकता से जोड़ा हुआ विषय। अब ये बात अलग है कि जब मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं तो आप उसे प्लीज धर्म से जोड़कर न देखें, क्योंकि मैं इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग मानकर चलता हूं और मेरा मानना बहुत सिंपल सा ये है फ्रेंड्स कि जो धर्म है मूलतः आध्यात्मिकता तक पहुंचने का रास्ता है। आध्यात्मिकता एक मंजिल है जहां हम धर्म के माध्यम से पहुंचते हैं, धर्म पर चलकर पहुंचते हैं। बस मेरे लिए यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और बहुत ही सरल सा इन दोनों में फर्क भी है। दरअसल यह विषय मेरे मन में उस समय आया जब मैं एक लेख पढ़ रहा था और उस लेख का निष्कर्ष ये था, शीर्षक भी कुछ इसी तरह का था कि जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। इसी तरह का कुछ उस लेख का शीर्षक भी था और सच पूछे तो पूरे लेख में इसी बात को बताने की कोशिश की गई थी, स्थापित करने की कोशिश की गई थी। मित्रों, मैंने पूरा वह लेख पढ़ा लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस लेख से सहमत नहीं हो पाया। मुझे वह लेख सच पूछे तो शीर्षासन करता हुआ मालूम पड़ा, शीर्षासन मतलब उल्टा मालूम पड़ा। ये मेरी अपनी दृष्टि है और जिन्होंने लिखा है डेफिनेटली उनको वो सही ही लगा होगा और मैं उनके विचार और भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए यहां अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन थोड़े से अलग नजरिए से इसे मैं इस तरीके से सोचता हूं फ्रेंड्स कि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है, हमें अपने अंदर एक आध्यात्मिक अनुभव लाना है तो सबसे पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा वैसे ही हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक अनुभव अपने आप आने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता कोई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको पहले हम अपने अंदर लेकर के आए और जब लेकर आएंगे तब फिर हमारा मन निर्मल हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि आध्यात्मिकता एक ऐसी जबरदस्त संपत्ति है, पूंजी है, या भाव है, या पवित्र वस्तु है कह लीजिए, जिसके रखने के लिए अगर कोई जगह हो सकती है तो वह पवित्र मन ही हो सकता है, निर्मल मन ही हो सकता है। तो यदि मेरे पास उसे रखने के लिए जगह ही नहीं है तो फिर मैं उसे लाऊंगा कैसे? और जैसे ही मेरे मन में निर्मलता आ जाएगी वैसे ही आध्यात्मिकता का भाव अपने आप उदय होने लगेगा। लेकिन जब हम इसे उल्टी तरीके से सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, आध्यात्मिकता कोई एक ऐसी चीज है जिसे हमें पाना है, जबकि आध्यात्मिकता अपने आप में एक वस्तु नहीं है। पाना है तो मंजिल तो है लेकिन एक ऐसी स्थिति है मित्रों जिसे आप महसूस करते हैं, और सच पूछे तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी और बड़ी कोई ऐसी स्वर्गिक और बहुत कठिन चीज नहीं है। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि एक दिन में कई कई बार हमें इसकी झलक मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे लिए बिल्कुल ही अनजान सी अनुभूति है। देखिए, जब आपका मन काफी खुश होता है, काफी खुश होता है, काफी उत्साहित होता है, जब हम सबका मन किसी भी वजह से बड़े उदार भाव से भर जाता है, हम अपने अंदर बहुत ही लाइट महसूस करते हैं, किसी तरह का दबाव नहीं, किसी तरह का तनाव नहीं, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि शरीर उड़ रहा हो। तो ये जो सारी अनुभूतियां हैं इस तरह की, मुझे लगता है ये आध्यात्मिक अनुभूतियां ही तो हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी इस तरह की अनुभूतियां हमारे अंदर आती हैं और अपनी हल्की सी झलक दिखाकर चली जाती हैं। मतलब वह हमें विश्वास दिला देती हैं कि देखिए मैं तो हूं, आप मुझ पर डाउट मत कीजिए, मैं हूं, लेकिन मैं टेम्परेरी रूप में ही अभी आपके पास आई हुई हूं, इसलिए क्योंकि जो अभी आपका जो मन है वह मुझे अपने बैठने लायक, स्थायी रूप से रुकने लायक दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आपके मन में अपनी कुटिया बना लूं और वहां पालथी मारकर बैठ जाऊं। मैं हमेशा आपके साथ रहूं, लेकिन मैं हमेशा साथ रहती हूं, रह सकती हूं, लेकिन मेरे रहने के लिए जो जगह चाहिए आप वह तो बनाइए। जैसे मान लीजिए कि कोई दीपक की लौ है, ज्योति जल रही है, अब तूफान भी चल रहा है, तो दीपक की लौ यही कहेगी कि भाई मैं अब इसमें स्थाई कैसे रह सकती हूं, क्योंकि तूफान चल रहा है, मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती, सबसे पहले आप इस तूफान को रोक दीजिए, मेरा तो काम ही है जलना और मैं जलती रहूंगी। तो उसके लिए आपको एक आदर्श स्थिति तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप आदर्श स्थिति बना लीजिए, आध्यात्मिकता रुक जाएगी। हमारे पास वह रुक नहीं पा रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन वह है, इसका प्रमाण वह बार बार, कई कई बार हमें बीच बीच में देकर जाती है। मुझे लगता है मित्रों कि आप सबका भी ऐसा अनुभव रहा होगा। सच पूछे तो जो पवित्र प्रेम की जो अनुभूति होती है, वो पवित्र प्रेम, उस पवित्र प्रेम की अनुभूति में भी आध्यात्मिकता ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज है। अब वो प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है, एक माँ का पुत्र के प्रति हो सकता है, बेटे का पिता के प्रति हो सकता है, पिता का अपने बेटे के प्रति हो सकता है, पड़ोसी के प्रति हो सकता है, दुखी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, एक ईश्वर के प्रति भी हो सकता है, लेकिन जो अनुभूति है वो वही है, आध्यात्मिक अनुभूति है। मित्रों, इसमें जो आत्मा शब्द है, असली में गड़बड़ी यहीं से होती है। आत्मा है नहीं है, इसके ऊपर बहुत से विचार हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बताने की कोशिश भी की है, राइट? इसी ही आत्मा को ही यूनानी दार्शनिकों ने, जिसमें हम प्लेटो और अरस्तु जैसों को लेते हैं, या सुकरात जैसों को भी लेते हैं, चाइना में चले जाएं तो वहां भी इस शब्द की बात हुई है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है, उसकी जो व्याख्या की है, उन्होंने चेतना के रूप में उसकी व्याख्या की है, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, चेतना, वो चेतना को एक तरह की आत्मा ही मानती है। सच पूछे तो मुझे भी जो आत्मा है कहीं ना कहीं चेतना के करीब लगता है। चेतना मुझे मित्रों एक प्रकार से जमीन की तरह मालूम पड़ती है, जैसे कि एक जमीन है, और जमीन किस तरह की है इसी पर निर्भर करेगा कि उसमें किस तरह की फसल पैदा होगी। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें दूसरी तरह की फसल पैदा होगी, और जो फसल पैदा भी होगी उसकी मात्रा अधिक होगी। अगर वह रेतीली है, बंजर है, तो दूसरी तरह की फसल पैदा होगी, और यहां तक कि अगर वो पानी वाली है, पानी में भी फसल होती है, आपको मालूम है कमल गट्टे तो पानी में ही होते हैं, सिंघाड़े पानी में ही होते हैं, और अगर उस जमीन पानी से भरी हुई है तो वहां एक अलग तरह की फसल होगी। तो हम कैसा जीवन जिएंगे, हमारे अंदर किस तरह की आध्यात्मिक अनुभूति आएगी, या हमारे मन की निर्मलता का स्तर क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना रूपी जमीन कैसी है। वह जमीन जितनी बेहतर होगी, अभी जो बातें मैंने गिनाई हैं उनका स्वरूप उतना ही बेहतर होगा। और जन्म से हम सब अपने अंदर, सच पूछिए तो अपनी चेतना में वो सारे तत्व लेकर आते हैं, जो जैसे कि जमीन, जमीन में सारे तत्व हैं। जमीन को आप देखें तो उसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं, उसमें नमी भी होती है, उसमें वायु भी होती है, उसमें ह्यूमस भी होती है, जिसे आप खाद्य पदार्थ कह ले, तो ये सब तो मिट्टी में होती ही है ना। तो जन्मजात हमें ये सारे तत्व हैं, लेकिन जो मिट्टी कि क्वालिटी में जो फर्क होता है वो सिर्फ अनुपात का होता है, कि किसमें कौन सा खनिज है और किस अनुपात में है, किसमें कितनी आर्द्रता है और वो कितनी मात्रा में है, यही सब कुछ उस जमीन की क्वालिटी को क्वालिटी में अंतर पैदा कर देता है। तो मित्रों, हम भी जब जन्म लेते हैं तो हमारी चेतना में भी वो सारे तत्व हैं जो हमारी चेतना का निर्माण करते हैं, उसके बिना तो फिर चेतना का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है ना। उसमें प्रेम है, करुणा है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, शांति है, ये सारे के सारे तत्व उसमें हैं। चलिए, जन्म के साथ ही हमें एक अनुपात उस मिल गया है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि हम फिर उस अनुपात के गुलाम ही बन गए। ये केवल मनुष्य के साथ है और ये उसकी विशेषता है कि अगर यदि वो चाहे तो वो अपने अनुपात को बदल सकता है। वह अपने इस अनुपात को बदल करके अपनी इस चेतना की जमीन को उपजाऊ बना सकता है, उर्वरक बना सकता है। और यह कर्म की शक्ति क्षमता केवल व्यक्ति को मिली हुई है, इसीलिए कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। हम उसे बदल दें, हम उसे बर्बाद कर दें, हम उसे बड़ा बना दें, जो भी चाहे हम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो करने की जो कोशिश है या जो कर्म है, जो प्रयास है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हम लगातार अपनी चेतना को परिष्कृत करते चल सकते हैं, संस्कारित करते चल सकते हैं। यानी कि जब हम परिष्कृत करेंगे, संस्कारित करेंगे, तो हमारा मन धीरे 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 निर्मल होता चला जाएगा, और जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाएगा, हमारी आध्यात्मिक अनुभूति के जो क्षण होते थे, जो पहले आकर के चमक के चले जाते थे, उनका स्टे रुक जाएगा। वो थोड़े से अधिक समय तक हमारी चेतना में रुकना शुरू कर देंगे, और एक स्थिति ऐसी आ सकती है जबकि वो एक तरह से हमारे परमानेंट रेजिडेंसी बन जाए, वो लगातार हमारे चेतना में अपनी जगह ही बना लें, और जो पहुंचे हुए साधु महात्मा संत हैं वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी रूटीन से हटकर आज आप लोगों से बात की है। दरअसल उस लेख को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ विचार आने लगे थे, तो मुझे लगा कि यह आप लोगों के लिए भी उपयोगी होगा और मैं आप सबके साथ शेयर करूं, और थोड़ा सा टेस्ट भी आपका जरा बदलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।